نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، الف لام میم. پہلی آیت حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات اللہ کی طرف سے جو اس نے اتارا انہی کا حصہ ہے، اور ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. جب ہم نے الف لام میم پڑھ لیا اور ہم مان گئے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، سب تجھے پتا ہے، تو آگے اللہ تعالی نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کرایا ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ذالک، یہ. اب پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا، اس کا میننگ بھی دیکھ لیا، اس کو سمجھ بھی لیا. اب میں آپ کو ایک ایک لفظ کو بریک اپ کر کے بتاؤں گی، پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ بتاؤں گی. ذالک، وہ. ذالک کلمہ ہے بعید کا، دور کا. دیٹ، ٹھیک ہے، وہ. الکتاب، ال الف لام کے ساتھ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اسم ہو، تو وہ خاص ہوتے، یعنی کتاب ہے، کوئی خاص کتاب کی بات ہے، یعنی قرآن مراد ہے. لا، نہیں. اور رعیب، کوئی شک. رعیب کے لیے، رعیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو انسان کو ڈسٹرب کرے، جو بے چین کرے، وہ والا شک. فی ہی، فی میں، ہی اس کو بریک اپ کریں، فی میں، ہی اس. اب آپ یہ نقطے دیکھ رہے ہیں نا، کہ شروع میں بھی تین نقطے اس کے، اور بعد میں بھی فی ہی کے بعد بھی تین نقطے ہیں. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ پہلے جو تین نقطے ہیں یہاں پر بھی رک سکتے ہیں، اور یا آپ فی ہی کے بعد بھی رک سکتے ہیں. یہاں تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، تو ریب پہ بھی آپ رک سکتے ہیں. یہاں پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے. ہدن، ہدایت ہے. للمتقین، لیے متقی لوگوں کے. کیا ہوتے ہیں متقی لوگ؟ یہ ہم انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے. بس آپ یہ دیکھ لیں، لیے. الذین، الذین کیا ہے؟ کنیکٹنگ ناؤن ہے، یعنی پیچھے کی جو بات ہوتی ہے اس کو آگے، یعنی یہ جو متقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں، سمجھائی. یؤمنون، یا شروع میں لگ جائے تو وہ کا معنی ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ پریزنٹ یا فیوچر میں بات ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی میں آپ کو چیزیں بتاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی. کوئی ہم گرامر نہیں پڑھیں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. وہ ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ بیچ میں آپ دیکھیں حمزہ میم نون ہے، حمزہ میم نون نظر آ رہا ہے، اسی سے ایمان بنتا ہے. ہر ایک لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، روٹ سے اس وہ لفظ نکلتا ہے. بالغیب، بی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں عربک میں، لیکن ایک معنی ساتھ کا ہے، ساتھ. الغیب، غیب کے. و، اور. یقیمون، یقیم قاف واو میم سے، قائم کرنا بھی اسی سے ہے، قاف واو میم سے نکلتا ہے، قیام بھی اسی سے نکلتا ہے. تو وہ قائم کرتے ہیں، जब भी वाव नून एंड में लग जाए तो वो बताता है कि ये जमा का सीगा है। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूं, ये एक दफा आप लिख लेंगे, बार बार इंशाल्लाह शुरू में मैं दोहराती रहूंगी, उससे फायदा ये होगा कि इंशाल्लाह ये बातें आपको याद हो जाएंगी और फिर कहीं पे भी तर्जुमा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हमारा यही मकसद है कि जब आप कुरान करीम एक दफा पढ़ के मुकम्मल कर लें तो आप खुद तर्जुमा इंशाल्लाह ताला समझ सकती हैं, खुद आप तर्जुमा कर सकते हैं। अस्सला नमाज, सला सिला से है, सिला कहते हैं कनेक्ट करने को, तो नमाज कनेक्ट करती है ना। वैसे भी हम उर्दू में भी बोलते हैं सोमो सलात की पाबंद है लड़की ना, तो नमाज रोजे की पाबंद। वह और मिम्मा, मिम्मा वैसे आपको मिम्मा नजर आ रहा है लेकिन इसको भी हम ब्रेकअप करेंगे, इसके आगे लिखें मिन और मा, मिन प्लस मा, मिन का माना से और मा का माना जो, तो मिम्मा मर्ज हो गया क्योंकि मिन मा कहने में मुश्किल होती है, तो मिन मा नहीं मिम्मा ऐसे हो गया। आप मिन से मा जो, उसमें से जो, रोजक ना हुम, इसको आप तीन पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे। तीन पार्ट्स में ब्रेकअप करने से हर हिस्से का माना अलग अलग हम लिखेंगे। रोजक किससे है? रिस्क से, रिस्क तो हम उर्दू में भी बोलते हैं, रिस्क दिया ना, ये जब भी ऐसे नून अलिफ ना, नून नून खड़ी अलिफ ना आएगा तो आपने याद रखना है इसका माना हमने का होगा, हमने। हुम उनको, ये एक जमीर साथ लगी हुई है, जैसे जिस जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं टू देम, उनको, ठीक है, तो हुम का माना उनको ही है, तो ये एक जमीर है। युन्फिकून, युन्फिकून नून फा कौफ इसका रूट है, ये जो रूट होता है ये बीच में कहीं होता है अक्सर। वाओ नून एंड का किस लिए? जमा के लिए, यानी ज्यादा लोगों की बात हो रही। शुरू में जो या आया वो किसके लिए? थर्ड पर्सन की बात होती है, वो इन्फाक करते हैं, वो खर्च करते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का लफ्ज भी आपने उर्दू में सुना होगा, उसी से ये है। वा और अल्लदीना वो लोग, युमीनूना जो ईमान लाते हैं, अभी लफ्ज गुजरा है ना पीछे युमीनूना, वो ही युमीनूना यहाँ पे। बी, बी का मैंने आपको क्या तर्जुमा बताया? बिल गईब में साथ का, बी साथ, मा जो। अब बी का मतलब हमेशा साथ का नहीं होगा क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एक देखिए सिर्फ एक हर्फ है और उसके कितने माने हैं। उन जिला माजी मजहूल है, नहीं भी आपको बात समझ आती कोई बात नहीं, जिनको समझ आ रही वो लिख ले माजी मजहूल। उन जिला नाजिल किया गया, पैसिव टेंस है, यानी करने वाले का नहीं यहाँ पे पता चल रहा, किया गया। इलाइका को भी ब्रेक करें, इला लिखें और का लिखें। इला तो आपने कई जगह कुरान पाक में लिखा हुआ देखा होगा, अलिफ लाम और छोटी ये लिखा होता है, तो वही है जब उसको साथ जोड़ दिया है, क्योंकि का खुद से अकेला नहीं खड़ा हो सकता, इसको कोई चाहिए, तो इला के साथ इसको जोड़ा गया। इला तरफ का, आपके, का माना आप का, यानी ये भी एक प्रोनाउन है, जमीर है। वह और माँ जो उन जिला नाजिल किया गया, मिन, मिन का माना लिख लें से, कबली का, कबल हम बोलते हैं ना उर्दू में, कबल आपसे कबल फलां आए थे, तो कबल पहले को कहते हैं, कबल पहले का आपसे, तो का माना तुम्हारा, तुम, आप, ये होता है। वह और बी साथ अल आखिरती, आखिरत के, आखिरत तो उर्दू में भी बोलते हैं, तो उर्दू का ही, आप देखेंगे बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो उर्दू के हैं, जिनको उर्दू आती है उनके लिए अरबिक समझना आसान हो जाता है। हम वो यूकिनून, यूकिनून किससे है? या काफ नून, यकीन इसी से बनता है ना, हम उर्दू में भी यकीन कहते हैं, तो वो यकीन करते हैं या करता है या रखते हैं या रखता है। वाओ नून है तो जमा है, वो यकीन रखते हैं। उलाई का, उलाई का भी इशारे के लिए बोला जाता है। हमने पहले सेकेंड आयत में जालिका पढ़ा, जालिका वाहिद है, उलाई का इसी की जमा है, जैसे दैट की दोज है। उर्दू में तो हम वो और वो ही बोल देते हैं, चाहे एक है चाहे ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश से आपको पता चलेगा, जैसे दैट के लिए दोज कहते हैं, दिस के लिए दीज कहते हैं। तो जालिका की जमा क्या है? उलाई का। ये भी बार बार चूंकि आएगा, तो अगर आज के सबक के आप सारे अल्फाज अच्छी तरह याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे यही बार बार रिपीट होने आगे। आपने वन टाइम याद कर लिए तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। आला ऊपर, अपॉन जैसे हम कहते हैं, हुदन हिदायत के हैं, अभी तो हुदन हमने देखा ना पीछे भी। मिन से, रब्बी रब, हिम उनके, हुम और हिम असल में एक ही चीज होती है, यानी उनके रब की तरफ से। तो क्या मतलब, यानी अपने रब की तरफ से। वा और उलाई का, यही लोग, हुम वो। अब ये देखे, पहले जुड़ा हुआ भी एक आता है तो उनको का माना आता है, लेकिन अलग से आता है तब इसका माना डिफरेंट है। वो अल मुफ्लिहून, अल आ गया तो खास हो गए, यही है जो, जैसे हम कहेंगे यही है जो, ये खास है, अल अल से पता चल गया। मुफ्लिह, हम मुफ्लिह बोलते हैं, उर्दू में भी बोलेंगे मुफ्लिह। वाओ नून लगा दिया तो जमा। मुफ्लिह लफ्ज किससे है? फा लाम हा से, ये तीन लेटर्स हैं, इनसे ये लफ्ज निकला, ये इसके रूट है। अब मुफ्लिह कहते हैं फलाह पाने वाले को, फलाह पा गया। हम उर्दू में बोलते हैं ना फलाहो बहबूद, बहुत फलाहो बहबूद के काम किए, तो फलाह क्या होती है उर्दू में, कभी सोचा आपने? फलाह कहते हैं कामयाबी को। तो ये मतलब यहां पे क्या, मुफ्लिह हूं जो कामयाबी पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये पांच आयात हमने पढ़ी और पांच आयात में ही हमें पता चल गया कि कामयाबी किस चीज के अंदर है। सुभान अल्लाह, जिस कुरान को खोलते ही शुरू में इतने बड़ा नुस्खा पता चल जाए, वो कुरान आगे आगे क्या देगा। सिर्फ पांच आयात में आज आपको पता चलेगा कामयाबी किस चीज में। तो वो मुफ्लिहून है, वो कामयाबी पाने वाले हैं। यहां तक आपका सबक है और इसको आपने तर्जुमे को बार बार दोहराना है, बार बार इसको सुन लें या तो, और इसको इतनी दफा सुने, इतनी दफा इसको ऊंची आवाज में बोलें कि जहन में बैठ जाए, और अलग अलग भी इन अल्फाज को अपने पास नोटबुक में लिखें ताकि आपको हर लफ्ज का माना याद होना शुरू हो जाए, बार बार इनको देखते भी रहें, ठीक है? और कुछ दिन में आपको इंशाल्लाह लगेगा कि ये तो कोई मुश्किल लफ्ज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। मेरे ख्याल में जो दूसरी दफा कर रहे हैं उनको तो याद ही करने की जरूरत नहीं है।